नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दिव्यात् वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः एक शब्द बोलेंगे। दिव्यात् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की। तो कुछ सिद्धांत की बातें हैं जो आप लोगों को बताना जरूरी है। तो सिद्धांत में जब वर्णन होता है तो लोगों को नींद आती है, लेकिन आप लोगों को ये सिद्धांत समझेगा तो आगे का जो लीला है वो समझ में आएगा। सिद्धांत ये है कि भक्ति में तीन प्रधान तत्व हैं, एक है संबंध, एक है अभिधेय और एक है प्रयोजन। इसका सिंपल सा अर्थ यह है, संबंध यानी संबंध भगवान से करना। संबंध करने से पहले, भगवान से संबंध करने से पहले दुनिया के संबंधों को थोड़ा विरक्त होना पड़ेगा। मतलब इंद्रिय भोग का, विश्व के वस्तुओं का, विषय वस्तुओं का जो भी संबंध है उसको विरक्ति के लिए करना पड़ेगा। जितना दुनियादारी से हम विरक्त होंगे उतना ही अधिक अच्छी तरह से भगवान से हम जुड़ सकते हैं। तो वो संबंध जो है वो हमें राधा मदन मोहन जी देते हैं। और दूसरा नाम है अभिधेय। अभिधेय यानी भगवान से संबंध होने के बाद में हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं या भगवान की सेवा आरंभ करते हैं। तो वो भगवान की सेवा जो है वो हमें राधा गोविंद जी देते हैं और उसको अभिधेय कहा गया है। सब लोग ध्यान सुनिए कि आपको समझ में आएगा तो आगे का सब कुछ समझ में आएगा। अभिधेय यानी भगवान की सेवा में लगना। और जब भगवान की सेवा में हम परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, परफेक्शन, तो उसको प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन का एक और भी अर्थ है पर्पज, प्रयोजन, किसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो जो प्रयोजन है मनुष्य जीवन का उसकी परिपूर्णता जो हमको राधा गोपीनाथ भगवान देते हैं। तो ये ब्रज के वृंदावन धाम के तीन प्रमुख विग्रह हैं, मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी। और जब श्री भगवान कृष्ण यहाँ से लीला समाप्त करके अपने धाम में जाने के लिए तैयार थे तो उस समय उन्होंने वज्रनाभ जो उनके प्रपौत्र थे उनको उन्होंने आदेश दिया कि जहाँ पर मैंने अवतार लेकर लीला की उसका आप अच्छी तरह से उद्धार करो। उद्धार यानी तीन प्रकार से, एक विग्रह, एक सरोवर और एक वन। धाम का जीर्णोद्धार तीन प्रकार से होता है, सरोवर, वन और विग्रह स्थापन करके। तो इन तीनों प्रकार से आप मेरे धाम को संरक्षित करना। तो फिर वज्रनाभ ने पहला विग्रह बनाया राधा कृष्ण का और वो उत्तरा को दिखाया, क्योंकि भगवान को देखे हुए सभी व्यक्ति उस समय अंतर्धान हो चुके थे। सुत्रा ही केवल जीवित थी। सुत्रा ने दिखा कि इस मूर्ति के चरण कमल साक्षात भगवान जैसे हैं, तो उस मूर्ति का नाम मदन मोहन जी रखा गया। और वही मदन मोहन जी संबंध देवता हैं, हमको उनके चरणों के साथ जोड़ने वाले हैं। फिर उन्होंने और एक विग्रह बनाया और उत्तरा ने कहा कि इसका जो वक्षस्थल है चेस्ट, वो साक्षात भगवान की तरह है। उनका नाम रखा गया राधा गोविंद देव, और गोविंद देव हमें उनकी सेवा देते हैं। और फिर अगर तीसरा विग्रह बनाया तो उनका जो मुख कमल है वो साक्षात भगवान की तरह से कहा गया उत्तरा के द्वारा, और उसका नाम रखा गया गोपीनाथ जी। तो ये तीनों विग्रह वज्रनाभ ने श्री वृंदावन धाम में स्थापन किए, और मदन मोहन जी के आचार्य बने सनातन गोस्वामी महाराज, और गोविंद देव के आचार्य बने रूप गोस्वामी, और गोपीनाथ जी के आचार्य बने मधु पंडित महाशय। बहुत सुंदर सुंदर कहानियां है वृंदावन में इन विग्रहों के विषय में। तो जो मदन मोहन जी स्थापन किए गए वज्रनाम द्वारा वो कालांतर में लुप्त हो गए। फिर अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं, जो ब्रज में आए, उन्होंने भजन किया तो उनके सामने प्रकट हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ तो महाविष्णु के अवतार उनके साथ ही नवद्वीप चले गए मायापुर धाम। उस समय वही ये मदन मोहन जी के विग्रह को पुरुषोत्तम चौबे को देखे गए, और पुरुषोत्तम चौबे से फिर सनातन गोस्वामी मस्त वृंदावन में लेके आए। फिर रूप गोस्वामी वृंदावन में आए और वो गोविंद देव को बहुत ढूंढ रहे थे। उनको इतिहास पता था कि गोविंद देव का विग्रह वज्रनाभ ने स्थापन किया था, तो वो ढूंढते रहे, सब ब्रजवासी के घर में ढूंढते रहे, किनारों में वन में ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। तो एक दिन उनको स्वप्न में दर्शन आया कि एक सुरभी गाय एक टील के ऊपर जाकर अपना दूध छोड़ देती है, सब कुछ अपने आप बिना दोहे। गोविंद देव ने उनको सपने बताया कि मैं वही हूं। तो फिर उन्होंने बड़े प्रेम से खुदाई किया और गोविंद देव का विग्रह प्रकट किया, और उसी टील पर योग पीठ कहते हैं, वहीं पर उनका सेवा करना आरंभ किया। उसके बाद में एक सुंदर रोचक कहानी है कि मधु पंडित महाशय जब वृंदावन में आए तो मधु पंडित जी का वर्णन ऐसा किया है कि वो इतने भाव में रहते थे कि हमेशा ही दुनिया में थे ही नहीं, वो उनका भाव इतना उच्च था कि वो हमेशा रोते रोते भगवान को पुकारते घूमते थे, कोथाए तुम्हें गोपीनाथ, कोथाए तुम्हें, ऐसे करके जाते थे। तो एक बार वो गोपीनाथ कहाँ हो तुम, कहाँ हो करके करके जमुना जी में गिर गए, और जमुना जी में डूबने लगे। तो गोपीनाथ जी प्रकट हो गए जमुना जी के अंदर, और उसको बेहोश गोपीनाथ मधु पंडित को उठाकर लाए, और मधु पंडित होश में आए तो उनको भगवान ने दर्शन दिया। तो गोपीनाथ जी ने पूछा आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही यहीं रहो। वो बंसीवट जो है, बंसीवट वहाँ की कथा है, बंसीवट में गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे साक्षात, फिर वही मूर्ति रूप हो गए, और उसकी पूजा फिर मधु पंडित ने की। तो मधु पंडित जी का देहांत हुआ तो उनकी समाधि भी उसी मंदिर में है, गोपीनाथ जी के मंदिर में। कालांतर में क्या हुआ, अब ये एक एक मंदिर की बड़ी विस्तार की कथा है, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा कम है इसलिए हम आपको बता रहे हैं संक्षेप में कि कालांतर में ये सब विग्रह स्थापन किए गए, उनके मंदिर बने। मदन मोहन जी का बड़ा विशाल मंदिर बना कालिया घाट के पास, गोविंद जी का योगपीठ पे बना, गोपीनाथ जी का बंसीवट के पास बना, सब सुंदर मंदिर बने। और जानते हैं कि बाद में औरंगजेब का हमला हुआ, बहुत लोगों ने हमला किया हमारे ऊपर। औरंगजेब बहुत ज़्यादा ही खूंखार था, वो आकर सभी मूर्तियों को नष्ट करता था। तो जब खबर आई कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो उस समय सभी गोस्वामियों ने जो मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ सबकी सेवा करते थे, उन्होंने मिलकर ये तय किया कि इन सभी विग्रहों को राजस्थान भेजा जाए, जयपुर, क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत थे वो बड़े वीर थे, और कभी भी औरंगजेब ने उनको उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया, और वीर होने के साथ साथ वो बड़े भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने विचार किया कि ये विग्रह जो भगवान के हमारे जो प्राण प्रिय विग्रह है वो उनके पास सुरक्षित रह सकते हैं, उनकी सेवा पूजा भी करेंगे और रक्षण भी करेंगे। तो फिर सभी विग्रह जो है वो बैलगाड़ी में रखते हुए बीच रात में निकाल दिए गए वृंदावन से। भगवान की इच्छा है, वो डरते नहीं अगर औरंगजेब से, उनकी इच्छा है कहीं और बसने की, इसलिए वो चले और फिर राधा कुंड में रुके। राधा कुंड स्थान जो है गोवर्धन में है, गोवर्धन मोर के रूप में है, तो राधा कुंड शाम को उनकी आंखें बताए गोवर्धन की, तो वहाँ पर सभी विग्रहों ने विश्राम किया है। इसलिए हमारे संप्रदाय के जितने विग्रह हैं, राधा विनोद जी, राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद जी और दामोदर जी, सभी विग्रह हमारे राधा कुंड के पास हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी विग्रहों ने विश्राम किया था। फिर वहाँ से वो विग्रह निकले हैं और काम्य वन में आए हैं, जैसे काम्य वन में भी सभी भगवान के मंदिर हैं, दामोदर जी का मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर आप बैठे हुए हैं, मदन मोहन जी का मंदिर थोड़ा सा गोकुल चंद्रमा नाम से प्रसिद्ध है आजकल, और गोपीनाथ जी का थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता है, दामोदर जी का है, गोकुलानंद जी का है, राधा विनोद जी का है, सबका मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर जब राधा गोविंद जी आए तो उन्होंने कुछ विश्राम किया यहाँ पर, और जब जाने का समय आया तो वृंदा देवी ने गोविंद जी से वार्तालाप किया कि मैं तो वृंदा देवी हूँ, मैं तो वृंदावन की देवी हूँ और आप तो जगन्नाथ हो, तो कहीं भी जाएंगे तो आप नाथ बन के रहेंगे, तो मैं यही रहूँगी मेरे वन में, वृंदावन में, वृंदावन यानी पूरा ब्रजमंडल, जैसे ये काम्य वन है लेकिन पूरे ब्रजमंडल का हिस्सा है। तो फिर वो वृंदा देवी जो आपके सामने है, ये मूल वृंदावन की मूर्ति है वृंदा देवी की, जो रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी को प्रकट कराया, फिर ब्रह्मकुंड में वृंदा देवी को प्रकट कराया उन्होंने। ब्रह्मकुंड कौन सी जगह है? ब्रह्मकुंड वो जगह है जहाँ पर भगवान के बछड़े और ग्वाल बालों को चुराने के बाद में जब उनको पता चला कि ये भगवान है, पश्चाताप हुआ तो भगवान से माफ़ी मांगी, और जब निकलने लगे तभी माफ़ी पूरी नहीं हुई, मतलब पश्चाताप पूरा नहीं हुआ, भगवान से क्षमा याचना की और निकल गए, लेकिन फिर वृंदावन में उतर गए और इतना रोए कि एक बड़ा कुंड बन गया ब्रह्म कुंड, पश्चाताप के अश्रु हैं वो ब्रह्मा जी के। तो उधर उस कुंड के पास में वृंदा देवी का ये विग्रह प्रकट हुआ जो आपके सामने विराजमान है। तो ये ओरिजिनल वृंदा देवी के विग्रह हैं। जब हम कल गए थे ना, वो उनका ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ पर सेवा करते हो, ये घर है उनका, तो यहाँ पर रुके। फिर गोविंद देव आगे चले गए हैं और वो जयपुर में बसे हैं, और जयपुर के राजा इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने अपना राजधानी जो थी ना, वो राजधानी का सेंट्रल लोकेशन जो है, वहाँ पर पूरा एक ऐसा मंदिर बना दिया कि जिसके 8 दरवाजे हैं 8 दिशा में, और हर एक दिशा में 7 दरवाजे हैं, मतलब पहले दरवाजे से हाथी भी जा सकता है, आज के जमाने में ट्रक भी जा सकता है, फिर दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और 7वें दरवाजे के अंदर आपको गोविंद देव मिलेंगे, वहाँ पैदल जाना पड़ता है, और सेकेंड लास्ट तक स्कूटर जा सकती है, सेकेंड थर्ड लास्ट तक गाड़ी जा सकती है, फिर उसके पहले बस जा सकती है, ऐसे इतना बड़ा। आप देखेंगे कि वास्तविक रूप में भगवान को अपने केंद्र स्थान में कैसे रखना है, ये आपको जयपुर के राजा से सीखना चाहिए। जहाँ पर उसका राजमहल होना चाहिए वहाँ पर भगवान का मंदिर बना दिया, ऐसा मंदिर बनाया, पूरे शहर की तरह है मंदिर। वो हमारी यात्रा 2 साल पहले गई थी वहाँ पर, इतना आनंद आया वहाँ पर। गोविंद जी का ठाट ऐसा है कि मंगला में 5 बजे 2000 लोग रहते हैं, दोपहर के राजभोग में 5000 लोग रहते हैं, संध्या आरती में 5000 लोग रहते हैं, जब भी जाओ फुल रहता है। वो ऐसा नहीं कि यात्रा आ रही मुंबई से और दिल्ली से, लोकल लोग सुबह उठते हैं, स्कूटर साइकिल लेते हैं, मंगला में जाते हैं, ऐसा ठाट है। मतलब कोई हरे कृष्ण संस्था, कोई निम्बार की संस्था, कोई ये आश्रम वो आश्रम ज्वाइन करने के बाद में जाते हैं, वो जयपुर के वासी हैं, वो जयपुर से ही भक्त हैं भगवान के। ये सीखना है बहुत आपको जाके, इसलिए धाम की यात्रा क्यों करते हैं, वर्णन बहुत मुंबई में बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन जब धाम में जाके प्रत्यक्ष देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है, ये बहुत आवश्यक है समझना। तो गोविंद देव इतने उनके ठाट हैं, इतना श्रृंगार, दिन में 6 श्रृंगार बदलते हो, हमारे यहाँ तो एक ही श्रृंगार होता है, शाम को बदलते हैं, 6 दर्शन में 6 वेश और 6 श्रृंगार होते हैं उनके, महाप्रभु जी का मंदिर भी हम। तो मदन मोहन जी जो विग्रह हैं उनके साथ में ललिता जी का विग्रह है राइट साइड में, अभी आप वहां देखेंगे तो गोविंद जी के साइड राइट साइड में वृंदा देवी है, और गोपीनाथ के राइट साइड में कौन है, जानवा देवी लेफ्ट में राधा रानी, और लेकिन बाद में क्या हुआ, राधा रानी ने स्वयं कहा स्वप्न में कि मुझे राइट में रखो, जानवा देवी को लेफ्ट में रखो। उसकी भी लंबी कहानी है, कोई बात नहीं। अभी हम गोविंद जी के सामने विराजमान हैं, तो सबसे समझना जरूरी है कि गोविंद जी से प्रार्थना क्या करनी है कि हमें आप अपनी सेवा में लगाओ। ये हम उसमें गृहित पकड़ते हैं मन में कि आपने संबंध बना लिया है उनसे। संबंध बनाने के लिए चार नियम का पालन करना पड़ता है। मांसाहार छोड़ देना चाहिए, नशा करना छोड़ देना चाहिए, जुआ खेलना बंद करना चाहिए, और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, विवाह के बाहर कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि चार नियम पालन करने से जीव मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य बनने के बाद भी भक्त बनना है, दैव भक्त कैसे बन सकते हैं। तो चार नियम पालन करने के बाद मनुष्य के स्तर पर आ जाते हैं, तो उसके बाद जप करते हैं, जप करने से फिर संबंध जुड़ता है, और उसके बाद में जो जो दुनिया के साथ संबंध बना हुआ है वो कम 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 होते जाएगा, उतना भगवान के साथ बढ़ते 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 जाएगा। उसमें से एक तरीका है धाम की यात्रा करना। तो धाम की यात्रा में क्या होता है ना, बहुत तीव्रता से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाते हैं, इंटेंसली, वो भी कार्तिक महीने में, वो भी भक्तों के संग में, वो भी कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए। ये सब भगवान का संबंध और दृढ़ करने का तरीका है, और जितना उनका संबंध दृढ़ हो जाएगा उतनी सेवा हमारी बढ़ेगी उनकी। और फिर एक दिन गोपीनाथ की मुरली सुनाई पड़ेगी। गोपीनाथ कहाँ प्रकट हुए थे, बंसी वट में, वहां पर भगवान ने मुरली बजाई थी। और आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान निरंतर मुरली बजाकर हम सभी को पुकार रहे हैं, चलो अब लौट चले, कितने दिन भटकोगे यहाँ पर, ये योनि में, वो योनि में, ये जन्म में, ये शरीर में, वो जानवर के शरीर में, पचासों बार, हजारों बार, लाखों बार हम लोग आकर यहाँ पर तड़प तड़प कर दोबारा आते हैं वही धक्का खाने के लिए। तो भगवान मुरली बजा रहे हैं, सब जीवों को पुकार रहे हैं। सब लोग को सुनाई पड़ रहा है क्या भगवान की पुकार, पीछे के लोग भी हाँ बोल रहे हैं। जब हम भगवान से संबंध स्थापन करके उनकी सेवा में अपने आप को रत करके, जैसे यशोदा माई के बारे में बताया था ना, पूर्णता मग्नता, तब जाकर परिपूर्णता प्राप्त होती है, और वो परिपूर्णता गोपीनाथ जी देते हैं, तब उनकी मुरली सुनाई पड़ती है, वो गूंज रही है आकाश में हमेशा पुकारते हुए। तो ये जो स्थान है जहां पर गोविंद देव को रखा गया, और ऐसा है कि जहां जहां गोविंद देव थे और जहां से निकले, फिर वहां पर दूसरी मूर्ति रखी गई, तो उसको शास्त्र में कहते हैं प्रतिभू मूर्ति। प्रतिभू मूर्ति में वही शक्ति होती है जो मूल मूर्ति में होती है। तो वृंदावन में भी प्रतिभू मूर्ति है, राधा कुंड में भी प्रतिभू मूर्ति है, और यहां पर भी प्रतिभू मूर्ति है। और यहां से जो गोविंद देव जयपुर गए वहां पर ओरिजिनल मूर्ति, इसलिए जयपुर जो है वो वृंदावन ही है, क्योंकि वृंदावन के सभी प्रमुख विग्रह जो है वो सभी जयपुर में विराजमान हैं। फिर बाद में जब औरंगजेब का आतंक समाप्त हो गया तो हम पूछेंगे कि मूर्ति वापस क्यों नहीं आई। देखो आपके पास कोई अमूल्य वस्तु आ गई तो आप छोड़ेंगे क्या उसको, दिल लग गया ना उनका, अरे इतना सेवा किया, उनका आसक्ति हो गई भगवान से, इसलिए वो छोड़ नहीं पाए उनको, इसलिए आज भी वही विराजमान है, और ना ही कोई उनको लाने का प्रयास कर रहे, क्योंकि वो जहाँ है उनकी इच्छा है वहीं पर पर्याप्त है वो। तो आसक्ति हो दुनिया में तो भगवान से होनी चाहिए, क्योंकि बाकी किसी की आसक्ति करेंगे तो वो वस्तु आपको छोड़ देगी, या आप मृत्यु के रूप में उसको छोड़ के चले जाएंगे, है ना, या तो वो छोड़ के चले जाएगी वस्तु आपको, वस्तु या व्यक्ति, या तो हम मरेंगे और हमारा संबंध टूटेगा। लेकिन भगवान से आसक्ति करेंगे जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेंगे वो, इसलिए आसक्ति उस वस्तु से करना चाहिए जो चिरंतन हो, चिरंतन यानी इटर्नल, परमानेंट, शाश्वत। इन दुनियादारी की वस्तुओं से आसक्ति करके बार बार यहां पर आना पड़ता है, जिस वस्तु से आसक्ति है वही दोबारा जन्म लेंगे, वही तड़पेंगे, वही मरेंगे, वही मृत्यु, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, वही सब तड़पते रहेंगे, उसी चक्र में गोल गोल घूमते रहेंगे यहां पर हम लोग। तो जिस जगह पर गोविंद देव की मूर्ति आई यहां पर वृंदा देवी के साथ, इस स्थान का नाम है काम्य वन। तो आप सब लोगों का काम्य वन में स्वागत है। सर हरि बोल में ज्यादा जोर दिखाई नहीं पड़ा मुझे। हॉरिबल कर रहे हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं काम बन जाए तो काम बन जाए। मतलब क्या हुआ? काम वन में आने से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। काम मतलब इच्छाएं, इसलिए काम में वन का बहुत महत्व है। हाँ, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। चतुर्थ काम्यक वनम वनानाम वनम उत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। दोबारा सुनेंगे। चतुर्थ काम्यक वनम वनानाम वनम उत्तमम 137 में से 108 ज्यादा प्रिय, 108 में से 12 ज्यादा प्रिय, 12 में से सबसे अधिक प्रिय कौन सा? अरे तीन बार तो बताया मैंने अब तक आने के बाद। सबसे अधिक प्रिय वृंदावन है, और वृंदावन के बाद दूसरा सबसे प्रिय जो है काम्यवन है। देखो अभी ये कौन कह रहा है किसको? वराहदेव जब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया तो वराहदेव वृंदावन में आए थे मथुरा में, और जमुना जी किनारे उन्होंने विश्राम किया है। उस नाम का जगह का नाम है विश्राम घाट, चैतन्य महाप्रभु ने वहां विश्राम किया है। तो वराहदेव ने जब विश्राम करने पड़े वो बैठे आराम से, तो वराहदेव ने पृथ्वी को उठाया था ना, पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने लात मार कर समुद्र के तले भेज दिया था। तो भगवान ने वराह अवतार लिया और अपने सुंड पर उनको उठाकर अपने कक्षा में रख दिया। लेकिन जब रखा तो उनको वृंदावन धाम पर रखा उन्होंने, तो पृथ्वी पूछ रही कहाँ रख रहे हैं मुझे आप, इतनी सघन वृक्षा वाली कहाँ दिखाई पड़ रही है। तो भगवान ने कहा ये मेरा वृंदावन धाम है, चिरंतन धाम, तो वहां पर रखा पृथ्वी ने। और फिर भगवान ने पृथ्वी पर जो वृंदावन धाम है उसमें यमुना किनारे विश्राम किया, तो वहां पर पृथ्वी देवी देवी बनकर मतलब मनुष्य रूप देवी बनकर वराहदेव के सामने आई। उन्होंने इस दिव्य धाम के बारे में बहुत प्रश्न किए, तो उसके उत्तर रूप उत्तर जो भी वराहदेव ने दिए उसका नाम है आदि वराह पुराण। क्या बताया मैंने? तो आदि वराह पुराण में स्वयं वराह भगवान ने इस ब्रज के विषय में विस्तार में लीलाओं का वर्णन किया। तो ये वराहदेव देवी से बात कर रहे हैं, पृथ्वी देवी से, भूमि देवी से। क्या? तत्र गत्वा नरो देवी, देवी को पुकार रहे हैं। ममलोके महीयति, यहां पर आने वाला व्यक्ति यहां आने के कारण मेरे पास पहुंच जाता है। बोलो हरि बोल। तत्र गत्वा नरो देवी ममलोके महीयति, ये काम्यवन जो है इस जगह जो पहले बैठे वहां के बारे में बताता हूं। यहां पर गोविंद देव के आने के पहले से काम्यवन विराजमान है। तो यहां पर ना बहुत लंबा चौड़ा, जितनी जगह हम बैठे हैं उससे भी लंबा चौड़ा एक सिंहासन था। वो कहते हैं कि 550 हाथ लंबा था, और वो सिंहासन क्यों बनाया गया था? क्योंकि भगवान चतुर्भुज विष्णु यहां पर विराजमान थे, और लक्ष्मी देवी का एक स्वरूप है विरजा देवी। वो विरजा देवी और लक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु भगवान का विवाह देवताओं ने यहां पर संपन्न किया था उस सिंहासन पर बैठकर, जहां पर अभी आप बैठे हो वो वही सिंहासन है जिसमें गोविंद देव को विराजमान किया गया। तो जब भी देवताओं ने यहां पर आकर लक्ष्मी देवी को और चतुर्भुज विष्णु को विराजमान किया तो उनके चरणों को धोया उन्होंने, प्रक्षालन किया, तो उसमें जो जल निर्माण हुआ उसका नाम पड़ा चरणामृत कुंड। वो उसके पीछे मैं अभी भी दर्शन करने का इच्छुक हूं लेकिन जा नहीं पाया वहां पर, जहां पर चरणामृत कुंड है जो विष्णु के पादकशालन का दिव्य जल है। और फिर सुंदर विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ, और फिर चतुर्भुज विष्णु इसी जगह निवास करते हैं लक्ष्मी देवी के साथ, यहाँ पर राधा गोविंद जी भी विराजमान है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है जिस वेदी पर जिस सिंहासन पर लक्ष्मी देवी विष्णु का भगवान का विवाह हुआ है वहां पर आप लोग बैठे हैं। चरण उसको सर पे लगाओ उस रज को। हाँ मैंने कहा था ना जो दिखता है वो एक दिखता है, जब सुनते हैं तो दूसरा दिखाई पड़ता है ना। तो श्रवण करने से देखना बहुत पावरफुल है, ये समझना आप लोग। तो एक और कहानी काम्यवन की मुझे याद आ रही है जो बहुत जरूरी आपको सुनना। जैसे मैंने बताया ना आपको कि भवानी और शंकर को भगवान ने त्रैमासिक व्रत करने के बाद में चिरंतन निवास दिया है। तो गणेश जी को कैसा निवास दिया? संक्षेप में बलि महाराज दैत्य बलि इतने ब्राह्मण की सेवा करते थे, तो ब्राह्मण की सेवा गुरु भी शुक्राचार्य उनकी सेवा करके बड़ा तेज प्राप्त करते थे, उनको संतुष्ट करके, और बार बार तेज प्राप्त करके आक्रमण करते थे, देवताओं को हरा देते थे। तो ऐसे ही एक बार आक्रमण किया तो कहते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा यज्ञ करके जब आए वो, तो इतना तेज था उनके अंदर कि वो तेज देखकर ही देवता घबरा गए कि इस तेज का सामना ही नहीं कर सकते हम। इतना तेज था उनका कि वो देख के देवता घबर कर भाग गए और सीधे भाग के विष्णु के पास गए। बताया महाराज हमारा कैसा होगा इसके सामने। तो भगवान ने कहा कि इसका सारा बल जो है ब्राह्मण संतुष्टि में है, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया उन्होंने, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, इसलिए वो अजेय हो गया है। तो इस वक्त आप गणेश जी का आश्रय हो, तो वो सब देवता गणेश जी के पास आए हैं, गणेश जी का पूजन किया है, और गणेश जी का पूजन करके उनको विनती की है कि आप हमारे सेनापति बनो। और भगवान ने जैसे कहा है कि इनको सेनापति बना के फिर आक्रमण करो, जिसके साथ कई बार हार चुके हैं उसको आक्रमण करने के लिए बताया भगवान ने दोबारा। तो फिर गणेश जी के नेतृत्व में आक्रमण किया, तो बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी तो पीट के आया था उनको मैंने, इतनी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन फिर भी वो युद्ध करने लगे, तो गणेश जी ने इतना भयंकर युद्ध किया कि बलि सहित सारे राक्षस जितने भी थे ना, वो शंबरासुर और सभी दैत्य उसके साथ में थे, बलि के साथ वो सभी लोगों को गणेश जी ने इतना घनघोर युद्ध किया कि सब लोग बेहोश होकर गिर गए और बाकी के भाग गए दैत्य लोग। और जब बलि को होश आया तो गणेश जी के भय से बलि सभी लोगों को लेकर भाग गए। उस वक्त श्री गणेश जी को यहाँ बुलाया गया और सभी देवताओं के बीच में उनका सत्कार किया गया, उनका क्या कहते हैं उसको अभिनंदन किया गया, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। चतुर्भुज विष्णु ने उनको यहाँ पर आशीर्वाद दिया कि आप काम्य मन में चिरंतन निवास करो। तो श्री गणेश जी भगवान काम्य मन में चिरंतन निवास करते हैं और किसी अन्य देवता को यहाँ पर निवास नहीं है, ब्रह्मा जी को बरसाने में है, वो एक एक्स्ट्रा है, बाकी कोई देवता को यहाँ पर निवास नहीं है, सबको दिन में आना है और शाम को जाना है। तो काम्य मन सब लोग अभी यहाँ पर मन की इच्छा प्रकट करना और प्रार्थना करना, और मैंने कैसे बताया केवल भगवान के संबंधित जो इच्छाएं वही यहाँ प्रकट करना है। सबसे बड़ी पवित्र और सबसे शक्तिमान इच्छा एक ही होती है कि भगवान हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी सेवा में रुजू होना चाहते हैं, चाहे शरीर में रहे और अगले शरीर में रहे, आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। उसी प्रार्थना को कहते हैं किम कर रहा, आपकी सेवा में क्या करूँ। उस व्यक्ति का नाम भी किंकर पड़ जाता है, किंकर यानी वो व्यक्ति जो हमेशा तत्पर रहता है, क्या करूँ, हाउ डू आई प्लीज यू राइट नाउ, कैसे प्रसन्न करूँ आपको, उसी भाव में उनको रहना है, उसी प्रार्थना को करना है। और भगवान की सेवा में कुछ आपकी योजनाएं हैं तो वो प्रार्थना आप कर सकते हैं, कोई भक्त कष्ट में है तो उसका कष्ट निवारण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कोई भौतिक प्रार्थना मत करना, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर आप भौतिक प्रार्थना करते तो मूर्ख व्यक्ति है। राजा के पास जाकर बोलेंगे दो रोटी दो, तो बोलेगा जिंदगी भर की रोटी की व्यवस्था कर सकता हूँ, दो रोटी क्यों मांग रहे। वो हमारी मूर्खता दरिद्रता का लक्षण है कि हम दो रोटी राजा से मांग रहे हैं। तो वैसे ही भगवान के सामने जाकर बोलेंगे बंगला दो, गाड़ी दो, बीवी दो, बच्चा दो, तो फिर वो हंसेंगे आपको देख के, अरे मैं तुम्हें मेरे साथ निवास दे सकता हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके आप मेरे साथ निवास और लीला कर सकते हो गौलोक धाम में, तो फिर बोल रहे मेरी बीवी दो, है ना, ये सोचने की बात है। हाँ, तो भगवान ने काम्य वन में अनंत धामों को और तीर्थों को निवास दिया है, जैसे कुछ नाम बताता हूँ, आदि बद्री, केदार, प्रयाग, गया, लंका, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, इत्यादि 68,000 तीर्थों को यहाँ पर निवास दिया भगवान ने। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और यहाँ पर आकर 9 कुंड बनाए। सुभद्रा जी भी यहाँ पर आई है, सुभद्रा कुंड भी यहाँ पर विराजमान है। पांडवों ने अपने वनवास में यहाँ पर कार्तिक महीने में निवास किया है और कार्तिक महीने में यहाँ पर भगवान आए पांडवों को मिलने के लिए, और भगवान पांडवों की अवस्था देखकर इतने क्रोधित हो गए भगवान ने कहा अभी मैं पूरे विश्व को भस्म कर देता हूँ, लेकिन युधिष्ठिर ने उनको शांत किया है, भगवान आपकी इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है आप हो ना हमारे साथ, आपके होने से हमको क्या चिंता है। तो फिर भगवान ने उनको कार्तिक महीने का व्रत करने के लिए सूचना यहाँ दी है और पांडवों ने काम्य मन में रहते हुए कार्तिक का व्रत का पालन किया है। वो कार्तिक व्रत के महात्म्य में वो कथा आती है पद्म पुराण में, पद्म पुराण में या स्कंद पुराण में कार्तिक का महात्म्य जो है उसमें ये कथा आती है कि भगवान ने काम्य वन में रहते हुए पांडवों को यहाँ पर आके निर्देश दिया है। यहीं पर जब पांडव निवास कर रहे थे तो वो यक्ष कुंड की जो लीला है वो भी यही हुई थी। यक्ष जो प्रकट हुए थे और पानी लेने गए थे, नकुल सहदेव बेशुद्ध हो गए, मर गए, भीमसेन भी मर गए, अर्जुन भी मर गए, फिर युधिष्ठिर गए। देखिए हमारे जो अजय ये भाई साहब हैं सब कोई नहीं मार सकता, बिना शरीर के जख्म के कैसे मर गए, मतलब कोई भविष्य शक्ति है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम भी मर जाओगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो शांति से इत्मीनान से संयम के साथ युधिष्ठिर महाराज ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। और फिर उन्होंने एकदम आवाज जो थी वो पूछने वाली बहुत खुश हो गई, ने कहा आखिरी सवाल पूछते हैं फिर आपके सारे भाई जीवित हो जाएंगे। तो आखिरी सवाल पूछा उन्होंने कि इस दुनिया में विश्व में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सब लोग सुन रहे हैं ना इसको, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है ये, हाँ हम लोग भी इसके सहभागी है इस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो धर्मराज ने उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि दुनिया में जन्म लेने वाले सभी जीव एक दिन मर जाते हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं मरा है, अभी तक जीवित है, वो सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। जाते ना मैयत में, जाते शमशान में, बोलते दुनिया तो नश्वर है, सब कुछ तो टेम्पररी है, कुछ राम नहीं है इसमें, कुछ कुछ दम नहीं है, सब कुछ झूठ है, ऐसा शमशान वैराग्य निर्माण होता है। आके स्नान करते हैं तो शमशान वैराग्य भी धूल के साथ निकल जाता है उसके साथ, मैल के साथ, और फिर दुनियादारी काम में भी लगे जाते हैं, जैसे कि अनंत काल जिएंगे। तो धर्मराज ने कहा कि जो जीवित है वो सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। तो इस उत्तर पर वो जो भनी आवाज जिसकी थी वो प्रसन्न हो गए, उन्हें दर्शन दिया, वो स्वयं धर्मराज यानी यमराज थे युधिष्ठिर के पिताजी। उन्होंने कहा कि वर मांगो, उन्हें कहा मेरे भाइयों को जीवित करो, तो सब जीवित हो गए। वो भी लीला यहाँ पर हुई है। संक्षेप में कहा जाए तो जब कैसे कैसे आश्रय दिया, क्योंकि सब धाम तीर्थ जो है बाहर के वो सब यहाँ पर बसना चाहते हैं, क्योंकि धाम भी व्यक्ति है, वो भी भक्त है भगवान के, धाम के रूप में सेवा कर रहे हैं। एक दिन भगवान बोले, नंद महाराज बोले उनको जाना है बद्रीनाथ जाना है ऊपर हिमालय में। तो क्यों, क्योंकि आप जब नहीं हुआ था जन्म आपका, तो हमने मन्नत मांगी थी कि जब बालक होगा तो हम बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्यों बद्रीनाथ जाते हो इतने दूर, उनको ये बुला लेता हूँ। बोला कैसे बुलाएंगे यहाँ पर, जैसे आप अभी आए तो मुंबई को घर लेके इधर आए क्या, आप आश्रम का लॉकर लेके आए क्या, आप इधर क्या हम हमारा घर लेके इधर आए क्या, नहीं वो अपने घर अपनी जगह पर है, हम यहाँ पर दूसरे घर में रहते हैं। तो भगवान ने कहा आंखें बंद कर लो, तो सभी ब्रजवासियों नंद बाबा ने सबने आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा आंखें खोलो, तो वो सब बद्रीनाथ नर नारायण केदारनाथ सबके बीच में खड़े थे, और गंगा जी बह रही है उधर, हर की पेड़ी हरिद्वार मानस सरोवर सब कुछ उनको दिखाई पड़ा। झट से उन्होंने कपड़े उतार कर सब में सभी तीर्थों में एक साथ स्नान कर दिया, और तीर्थ वही रहे। फर्क क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, ऑक्सीजन बहुत कम है, यहाँ पर पर्याप्त वातावरण है, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है, और आप जब वहां जाकर वही लाभ ले सकते हो जो बद्रीनाथ केदारनाथ का है, लेकिन साथ साथ में जो वहां नहीं मिलता है वो यहाँ आने से मिलता है, वो क्या है, प्रेम और भक्ति। तो वहां पर शायद मिलेगा नहीं आपको, लेकिन जो बद्री केदार धाम यहाँ पर विराजमान है उनका दर्शन यहाँ करने से साथ साथ उनके लाभ के साथ प्रेम भक्ति का भी लाभ मिलता है, क्योंकि वो धाम भी इस धाम में शरणागति प्राप्त करने के बाद में इस धाम का गुण भी आत्मसात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं आपके साथ में रहूंगा तो आपका भी गुणों का आदान प्रदान होगा ना, आपका कुछ अच्छे गुण मेरे अच्छे गुण वो मिल जाएंगे। वैसे जब बाकी की धाम वृंदावन धाम में आकर संग करते हैं यहाँ रहते हैं, तो इस धाम का जो दिव्य गुण है वो उनके अंदर भी चला जाता है। तो उसके बाद में गया, जब नंद महाराज को लगा कि मुझे शायद करना है गया जाके, तो भगवान ने गया जी को प्रकट किया, वो गया कुंड के नाम से प्रकट है। अभी गया कुंड में तो कथा करने का समय नहीं है, लेकिन गया कुंड का एक महात्म्य आपको सुनाता हूँ। वहाँ पर नंद बाबा ने अपने पुरखों का श्राद्ध किया है, और वो गया कुंड को चैतन्य महाप्रभु भी गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, जगन्नाथ मिश्रा जी का स्वयं भगवान। लेकिन वो जब गया यहाँ प्रकट होता है तो आपको श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा है शास्त्र में आदिवारा पुराण में कि अगर आप गया कुंड काम्यवन में पहुंचोगे, उसके सीढ़ियों पर बैठोगे और अपने गए हुए पुरखों का ध्यान करोगे, जैसे गृहस्थों के लिए वाइफ का एक साइड है, फिर अपनी मम्मी का एक साइड है और एक पिताजी का साइड है ना, हमारे लिए तीन शाखा है, तीन मंच के हम जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों मंच में जितने लोग गुजरे हुए हैं उनका उस घाट में बैठकर आप केवल ध्यान भी करेंगे तो भी वो सब मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा महात्म्य होता है गया कुंड का। जो गया कुंड गया में जाएंगे आप तो वहां पर भी ये लाभ नहीं है, वहां पर पूरा विधि करना पड़ेगा। यहाँ पर भी विधि करने की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, लेकिन केवल आचमन करने से और उनका नाम लेने से, उनका स्मरण करने से भी उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये जो काम्यवन है ये भगवान के वत्सल लीला, सख्य लीला और माधुरी लीला, इन तीनों का स्थान है। तो गोपियाँ भी बहुत बार यहाँ पर कृष्ण के हाथ में आती है। तो एक बार गोपियों ने कहा, अरे हमने सुना है कि तुम पिछले जन्म में राम थी। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं मैं तो बाल बाल हूँ, मैं कहाँ राम, तो आप गलत फहमी आपकी। तो बहुत बहस हुई इसमें, कृष्ण ना 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 बोल रहे, गोपी हाँ 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 बोल रही, नहीं 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 ऐसा। फिर समय आया ये वाद विवाद में, मैंने कहा देखो अगर आप हमें राम का दर्शन नहीं कराते हो तो आज से आपसे बोलना बंद, नहीं मिलेंगे आपको। तो मैंने क्या कहा था, कृष्ण के लिए ये सबसे बड़ी धमकी है, जब गोपियाँ या ग्वाल बाल आपसे नहीं मिलेंगे ऐसा बोलते हैं तो उनके लिए तो अल्टीमेट अल्टीमेट थ्रेट है वो। तो फिर कृष्ण ने कहा आंखें बंद करो, तो सब लोगों ने आंखें बंद की, बाद में हुआ आंखें खोलो, तो कृष्ण सभी गोपियों के सामने नीले रंग के कृष्ण भगवान जो है वो हरे रंग के दुर्वा रंग के राम बने, धनुषधारी बलराम जी लक्ष्मण बने, और सभी जितने ग्वाल बाल थे वो बंदर बने, और फिर वो राम बने हुए कृष्ण जो है वो उन्होंने वो बैठे, उन्होंने शिवलिंग स्थापन किया, उसकी पूजन किया, तो रामेश्वर धाम प्रकट हो गया वहां पर। फिर रामेश्वर से भगवान ने कुछ ही क्षणों में, उधर तो बहुत दिन लगे थे, 12 दिन लगे थे, उधर कुछ ही क्षणों में उन्होंने समुद्र प्रकट किया सबके आंखों के सामने, और कुछ ही क्षणों में पत्थर रखे हुए वो सेतु बना दिया, तो सेतु बंद प्रकट हो गया, हिंदी क्या कौन सा बंगाल का उपसागर जो है वो प्रकट हो गया। उसके बाद में वहां पर कुछ ही क्षणों में पार करके प्रभु रामचंद्र पहुंच गए, और वहां से हा 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 करते दशानंद रावण प्रकट हो गया, राम ने बाण निकाला, रावण को मारा, उसके पहले हनुमान जी छलांग लगाकर लंका को जलाया, अशोक वाटिका को भस्म कर दिया, वो सब कुछ कुछ ही क्षणों में कुछ ही मिनटों में हुआ। और फिर भगवान ऐसे आवाज आई, आंखें बंद करो, आंखें बंद हो गई, फिर खोलो, तब वापस कृष्ण बलराम बाल बाल सब वापस आ गए और सब मिले कुछ राजा रानी को, बड़े खुश हो गए। लेकिन सेतु बंद, रामेश्वर, समुद्र, अशोक वाटिका, लंका, रावण दहन सली, सब वैसे के वैसे रह गया। उस प्रकार से भगवान ने इस लीला के माध्यम से सभी स्थानों को आश्रय दिया। उन्होंने ऐसा अद्भुत स्थान है ये काम्यवन, एक जगह आने से आपको कई स्थानों पर जाने का एक साथ लाभ मिलेगा और प्रेम भक्ति भी मिलेगी साथ में। तो एक अभी इसके बाद जो हम स्थान में जा रहे हैं उसका नाम है विमल कुंड। हाँ, विमल कुंड ऐसा अद्भुत स्थान है कि आज का जो है ना पाकिस्तान में सिंध प्रांत, वो सिंधु देश था पहले, वो भारतवर्ष में था, अफगानिस्तान तक भारत था, पाकिस्तान रशिया तक भारत था, रशिया का नाम है रूसीय देश, रूसीय देश मतलब वहां के, यहाँ के ऋषि वहां जाकर तपस्या करते थे इसलिए उसका नाम पड़ा रूसीय देश, जिससे आज रशिया हो गया वो। ऑस्ट्रेलिया का पता है क्या नाम होता, अस्त्रालय, वहाँ पांडवों का स्टॉक था पूरा शस्त्र अस्त्र का, वहां पर जाकर वो प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा अस्त्रालय, आज क्या बन गया ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही पूरे विश्व के देशों के पुराने नाम हैं, पूरा भारतवर्ष ही एक धर्म का प्रतीक था। एनीवेज तो मैं क्या कह रहा था, सिंध प्रांत में चंपक नगरी में एक राजा था जिसका नाम था राजा विमल, बड़ा धर्मशील सद्गुण संपन्न और बड़ा ही प्रभावी भक्त था भगवान का और राजा भी था। उसको कहते हैं 6,000 पत्नियां थी, पता नहीं कब मिलता होगा उनको, किस दिन किसको मिलता होगा, लेकिन 6,000 पत्नियां क्यों थी, क्योंकि उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वो विवाह करते गया कि पुत्र होगा, लेकिन पुत्र हुआ ही नहीं, 6,000 पत्नियां, बड़ा धन संबंध था वो तो कुछ समस्या नहीं थी, लेकिन इतने समय के बाद भी उनको पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि महाराज जी बताइए क्या हमारे जीवन में समस्या क्या है। तो गुरुजी ने ध्यान लगाया और देखा कि इसके जीवन में कहीं भी पुत्र की संभावना नहीं है। तो बड़ा दुखी हुआ राजा सुनकर, लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि एक खुशखबरी आपके लिए है, थोड़ी मिक्सचर में है दुख और सुख वाली, लेकिन है जरूर। वो ये है कि आपको 3 करोड़ कन्या होने वाली है। तो बोला मैं पुत्र के लिए पूछ रहा था तो 3 करोड़ कन्या का बोझ अभी आ गया ऊपर, लेकिन खुशखबरी यह है कि इन 3 करोड़ कन्याओं का विवाह श्री कृष्ण अपने साथ करेंगे और उनको उद्धार भी करेंगे, आपका भी उद्धार करेंगे उनका भी उद्धार करेंगे। तो बट थोड़ा खुश हो गए, यथावकाश उनको 3 करोड़ कन्या प्राप्त हुई पुत्री के रूप में, और यथावकाश को ऊपर मतलब उपवर भी हो गई, यानी विवाह योग्य हो गई। तो ये बड़े यज्ञ करने वाले थे अग्निहोत्री, हमेशा यज्ञ करते थे, हजारों यज्ञ कुंड बनाकर बीच में बैठकर रानी राजा यज्ञ कुंड में बैठकर यज्ञ करते थे। तो फिर उपवर हो गई, तो फिर उनको गुरु जी ने बताया था कि वो कृष्ण कैसे होंगे और कहाँ मिलेंगे आपको। कहते आज से 115 वर्ष के बाद में वो भगवान जो है वो अवतरित होने वाले हैं। तो 4 भुजा वाले भगवान, नीले शरीर होगा उनका, मोर पंख धारण किए होंगे, पीताम्बर पहने होंगे और 4 हाथ में 4 वस्तुएं शंख चक्र पद्म गदा धारण किए होंगे, ऐसे से वर्णन बताया। और वो मथुरा में वृंदावन में मिलेंगे आपको, वो आपके कन्याओं का वरण करेंगे। यथावकाश जब ये बड़ी हो गई तो उन्होंने दूत को भेजा मथुरा वृंदावन में, तो मथुरा में कहीं नहीं मिले, तो वृंदावन में खोजता गया तो एक जगह कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वहाँ दर्शन हुआ और वो जो नीला बालक था उसका वर्णन बिल्कुल मिलता जुलता था। एक ही समस्या थी, 4 भुजा के बदले में 2 ही भुजा थी और शंख चक्र पद्म गदा नहीं थे, बाकी सब कुछ था। तो दूत निराश हो गया और जाके लौट कर अपने राजा को बताया कि महाराज जी मैंने एक व्यक्ति को देखा लेकिन ये एक कमी थी उसके अंदर, आपने आपके वर्णन के अंदर। अच्छा देखो योगायोग कैसा है, उसी समय युवा अवस्था वाले भीष्मदेव, उन्होंने दिग्विजय किया था, पता है ना आपको, जब देवव्रत राजा थे भीष्म तो उन्होंने दिग्विजय किया था, 4 दिशाओं में विजय प्राप्त करके सम्राट बन गए थे, राजा नहीं बने लेकिन अजेय राजा सम्राट बने थे वो। तो उस समय वो सिंधु देश में दिग्विजय करने के लिए आए थे। और दिग्विजय का मतलब क्या होता है कि मित्र राजा होगा तो हाथ मिला के भोजन करना है और आगे चले जाना है, अगर शत्रु होगा तो चैलेंज करके युद्ध करना है, उसको परास्त करना है, फिर आगे चले जाना है। तो ये तो भक्त थे दोनों वैष्णव, तो उनके पास युद्ध कुछ नहीं हुआ, मिलन हुआ, प्रेम से आलिंगन हुआ, भोजन हुआ। तो उसमें राजा विमल ने भीष्मदेव को ये प्रश्न किया कि महाराज ये क्या रहस्य है, हमारे गुरु जी ने ऐसे ऐसे कहा था, मैं दूत को भेजा तो मुझे वो लड़का मिला लेकिन उसके 4 भुजा नहीं है 2 ही भुजा है, आप जरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं त्रस्त हूँ बहुत। तो भीष्मदेव ने कहा कि ये बहुत रहस्य की बात है, ये रहस्य की बात ऐसी है कि वो 4 भुजा वाले थे मथुरा में थे, लेकिन जब देवकी ने विनती किया तो वो 2 भुजा वाले बालक बन गए, उसको वसुदेव जमुना पार करके गोकुल में छोड़ के आए, वहां से वो छठिकरा गए, वहां से नंदगांव में गए, वहां से वो अभी वृंदावन में खेल रहे हैं। आप चिंता मत करना, किसी को बताना नहीं, कंस के भय से कोई आपको बताएगा नहीं, वो दूत भी कंस में नगरी में गया था लेकिन कंस के भय से किसी ने भी उसको बताया नहीं क्या हुआ एक्चुअली, क्योंकि ये विषय क्या कहते हैं उसको प्रोहिबिटेड, निषिद्ध विषय था, सबको आदेश था इस विषय में कोई बात करेगा तो मृत्युदंड को प्राप्त करेगा। तो दूत मथुरा में भी गया था, उसने बहुत संदेश वहां पर इंक्वायरी किया था लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। तो भीष्मदेव ने बताया कि कंस के भय से किसी ने बताया नहीं, मैं आपको ये रहस्य की बात बता रहा हूँ कि वही कृष्ण जो आपके कन्याओं के लिए योग्य वर हैं वो अभी वृंदावन में खेल रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहो। तो भीष्मदेव की कृपा से ये रहस्य भेद हुआ, भीष्मदेव अपने आगे चले गए दिग्विजय करने के लिए। फिर दूत वापस आया है वृंदावन में, इस बार जब वो आया है तो भगवान सब बाल बालों के साथ खेल रहे थे उस समय, और क्या हुआ, भगवान ने खेलते खेलते आकाश मार्ग से आने वाले दूत को देखा, तो खेलते खेलते उन्होंने दूसरा रूप धारण किया और वो रूप आकाश में जाके उनको मिला और एक रूप यहीं रहा जो सब ग्वाल बालों के साथ में घर चला गया। समझ में आया आपको, अपने ही शरीर से एक और रूप प्रकट किया भगवान ने और उसके साथ आकाश मार्ग से वो सिंधु देश गए। सब लोग सुन रहे ना, बहुत सारी बातें बता रहा हूँ एक साथ में आपको, इसलिए सिंधु नरेश गए तो भी सिंधु नरेश वहां पर हजारों कुंडों में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, और ये आकाश मार्ग से जब भगवान वहां प्रकट हो गए तो सिंधु नरेश जी खड़े हो गए आदर से और उनको हाथ जोड़कर सम्मान किया और तुरंत अपनी 3 करोड़ कन्याओं को दुल्हन बनाकर वहां पर लाया और उसी यज्ञ वेदी में हजारों कुंड में सबके साथ भगवान ने उनका विवाह किया, मतलब राजा ने उनका विवाह करवाया भगवान से, और भगवान ने 3 करोड़ रूप धारण किए और एक एक कन्या के साथ में विवाह किया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि 16,108 शादी की उन्होंने, तो नारद मुनि में हैरान हो गए, पता नहीं कैसे चलती हुई गृहस्थी इनकी, तो देखने आए द्वारका में क्या चल रहा है। नारद मुनि को भी प्रश्न होता है कि भाई 16,108 महलों में ये रहते कैसे हैं, इसके साथ कब समय बिताते हैं। तो देखा उन्होंने कि सभी महल में वो कृष्ण उपस्थित थे, किसके साथ भोजन कर रहे हैं, किसके साथ झूला झूल रहे हैं, किसके साथ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किसके साथ सो रहे हैं, किसके साथ आंगन में लीला कर रहे हैं, ऐसा भागवत वर्णन आता है। एनीवेज, तो इन्होंने 3 करोड़ उपवर सुंदर कन्याओं से दुल्हन बनाकर स्वागत किया और विवाह किया और उन्होंने बहुत सत्कार किया भगवान का। उसी समय भगवान के आशीर्वाद से सिंधु नरेश मुक्त हो गए और गौलोक धाम चले गए। रानी और राजा, सभी रानियों के साथ विमल राजा का उद्धार हो गया भगवान के आशीर्वाद से। फिर 3 करोड़ अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ भगवान आकाश मार्ग से कामने वन में आए। वहां पर वृंदावन में उनकी लीला चल रही है, रोज गौचारण चल रहा है, घर जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है एज इट इज, नो डिफरेंस। और यहां पर आकर कामने वन में कृष्ण भगवान ने उन 3 करोड़ कन्याओं के लिए 3 करोड़ महल बनवाए और यहां निवास किया और यहां पर उन्होंने रास लीला रचाई 3 करोड़ नवविवाहित पत्नियों के साथ में। वो रास लीला में इतना आनंद का अनुभव हुआ सभी को कि सबके आंखों से अश्रु निकले कृष्ण भगवान के और 3 करोड़ नवविवाहित पत्नियों से, और वो जो अश्रु धारा बही उससे एक सुंदर कुंड बना जिसका नाम क्या है, विमल कुंड। बोलो हरि बोल। विमल कुंड का निर्माण हुआ। जैसे ही भगवान के प्रिय पत्नियों से और भगवान के नेत्रों से बहे हुए अश्रुओं से कुंड का निर्माण हुआ, 68,000 तीर्थों ने और धामों ने तुरंत उसमें प्रवेश किया। इसका मतलब क्या होता है, विश्व में त्रिलोकी में जितने धाम हैं, क्षीर सागर से लेकर आप स्वर्ग लोकों में जो गंगा है, आकाश गंगा, जितने भी आप सोचो, सभी तीर्थ, सभी कुंड, सभी पर्वत, सभी वन, जितने भी है वो सब ने प्रवेश किया उसके अंदर। और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कुंड को, ये कुंड में जो भी स्नान करेगा, स्मरण करेगा, स्पर्श करेगा, आचमन करेगा, उसके किनारे पहुंचेगा या बंबई जाकर स्मरण करेगा उसका, तो भी वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा, मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। इसलिए विमल कुंड को तीर्थराज कहा गया है, तीर्थराज विमल कुंड धाम की। और ये लीला यहाँ चलती रही और वो लीला वृंदावन में भी चलती रही। यही यहाँ का विशेष महत्व है कि कामे मन में भगवान ने बहुत सारे धामों को, तीर्थों को आश्रय दिया। तो सब लोग गोविंद देव से प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए कि हम लोग सब लोग याचक है, याचक यानी भिक्षुक। हम लोग को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम सोचते हैं हमारा क्वालिफिकेशन है, थोड़ा बेटर है ना सब लोग, कोई हमारा योग्यता नहीं है, खाली हम सोचते हैं कि हमारी योग्यता है, हम धनवान है, पढ़े लिखे हैं, ये है वो है, लेकिन वास्तव में भगवान के सामने हमारी कोई योग्यता नहीं है। एट द बेस्ट हमारे सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति में हम एक याचक बनकर उनके सामने आ सकते हैं, और जब वो नम्रता से उनके सामने आते हैं तो फिर हम पर कृपा होती है। भगवान 2 चीज से रिझते हैं, एक नम्रता और एक कृतज्ञता। अगर हम कृतज्ञ हैं जो हमको मिल रहा है और नम्रता को बनाए रखे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। हम सब लोग यहाँ पर नम्रता कृतज्ञता को प्राप्त करने के लिए और क्या कहते हैं व्यक्त करने के लिए आए हैं, और जितने नम्र और कृतज्ञ रहेंगे हम उतनी उनकी कृपा हमारे ऊपर अधिक से अधिक बरसेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।